Dublin is a lot of the same. اللهم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قرآن مجيد میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اسی کے نام کا تذکرہ کیا جائے، اسی رب کو پکارا جائے، اسی معبود کو پکارا جائے، اور ہر چیز سے، ہر باطل سے ہٹ کر کے، ہر چیز سے کٹ کے، علائق دنیا سے ہٹ کر کے اپنے کو اللہ سے وابستہ کر دیا جائے. رسول اللہ کی پوری زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس حدیث کی تفسیر نظر آئے گی کہ پروردگار عالم کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. جتنے سہارے انہوں نے لیے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اگر علی کمک کرتے ہیں تو علی بحیثیت فرد کمک نہیں کرتے پیغمبر کی، مگر علی کے ہاتھ ید اللہ ہیں، علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، علی جنب اللہ ہیں، علی نفس اللہ ہیں. یعنی رسول کا ناصر بھی وہ ہے جو پروردگار عالم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اس لیے رسول نے مدد لی تو علی کی. بعد رسول جب امیر المومنین آئے، دنیا نے لاکھ چاہا کہ اپنے در پر جھکا لیں، مگر امیر المومنین نے وہی راستہ اختیار کیا، وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا. ذرا سی بات مان لیتے تو حکومت کرتے، مگر وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اللہ کے دین کی وضاحت کرنے کے لیے آئے تھے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہماری شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کو اتنی مشکلیں نہ برداشت کرنی پڑتی کہ کہنا پڑا صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علیہ مسر علیہ. اے بابا، آپ کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو کالی رات کی طرح ہو جاتی، مگر دین واضح رہے، دین پر آنچ نہ آنے پائے، یہ ان کا مقصود تھا. امام حسن نے یہی کیا. صبح کی تو دین کے لیے دنیا میں ہم نے بڑے بڑے حاکموں کو دیکھا ہے، بادشاہوں کو دیکھا ہے، ذلت اٹھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، مگر تخت نہیں چھوڑ پاتے. مگر فاطمہ و علی کے لال نے تخت پر ٹھوکر مار دی صرف اللہ کا دین بچانے کے لیے. اتنی بڑی حکومت چھوڑ دی، اللہ کا دین ہے. بھلا اتنے لوگوں کا اسوہ امام حسین کے پاس تھا. امام حسین سے جب یزید جیسا فاسق و فاجر بیعت مانگ رہا تھا، بیعت طلب کر رہا تھا، تو حسین کیسے بیعت کر لیتے؟ میرے بچے جو تشریف فرما ہے اس مجلس میں، دیکھیے بیعت ایک محض نام نہیں ہے، بیع کہتے ہیں بیچنے کو، اور بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جس کی بیعت کرے اپنے نفس کو اسے بیچ دے. بھلا کیسے ممکن تھا کہ حسین ابن علی جو نفس اللہ کے فرزند ہیں، جو خود نفس اللہ ہے، وہ یزید ایسے فاسق و فاجر کو اپنا نفس بیچ دیتے؟ اب اگر یزید صحیح جو بھی کرتا، یزید گویا حسین اس کی تعریف کرتے. اور حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے. آپ पढ़ते हैं ज़ियारत में, आप आदम के वारिस हैं, आप नूह के वारिस हैं, आप इब्राहिम के वारिस हैं, आप मूसा के वारिस हैं, आप ईसा के वारिस हैं, आप मोहम्मद अरबी के वारिस हैं, आप अली मुर्तज़ा के वारिस हैं, इतनी विरासतें, यानी 1,24,000 अंबिया की विरासतों का दारोमदार हुसैन इब्न अली पर है। भला हुसैन ऐसी की बयत कर लेते? यजीद, जिसके लिए आमतौर पर तारीख में लिखा गया है, शराब पीता था, शराब इतनी पीता था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने इसका नाम रखा था सुकरान, बदमस्त। इतना जलील शख्स था कि ये चाहता था, इसका इरादा था कि खाने काबा की छत पर बैठ के शराब पिए। इसने खुद इस तरह के अशार पढ़े हैं, अगर दीन पैगंबर में शराब पीना जायज नहीं है, दीन मोहम्मद में, तो दीन मसीह पर होकर शराब पी लो। शेर पढ़ता है, काश बद्र के मेरे वो मकतूल जिंदा होते तो कहते यजीद तेरे हाथ कभी शल न हो, तूने मोहम्मद से कैसा बदला ले लिया। ये इसकी पूरी सीरत है। सोना पहनता है जो मर्दों के लिए हराम है, रेशम पहनता है जो हराम है, और ऐसी बातें जो इस मेंबर के लायक नहीं है कि बयान की जाए। ऐसे शख्स की हुसैन बयत कर लेते तो रसूल की सारी जितनी खिदमतें थी, जितनी नुसरत थी, सब बर्बाद हो जाती, अमीर मोमिनीन की कालशें खत्म हो जाती। इसलिए हुसैन ने तय किया कि जितनी बड़ी कुर्बानी भी देना पड़े वो दीन को बचाने के लिए देंगे। और ये कह दिया था उन्होंने, वलीद से भी ये कह दिया, मरवान भी के नुमाइंदे थे यजीद के, कि हम जैसे यजीद जैसों की बयत नहीं करते। और मगर अब उसके लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ी, वतन छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती। यहाँ बहुत से ऐसे अफराद बैठे हैं जिन्होंने अपना वतन छोड़ा है, उन्हें आज भी अपना वतन याद आता है, मगर आपने जो वतन छोड़ा है वो मदीने जैसा नहीं है। जो वतन हुसैन छोड़ के आए थे उसमें नाना का मजार था, उसमें माँ का मरकज था, उसमें भाई की कब्र थी, उसे छोड़ के आए पूरी रात कभी नाना के मजार पर हाजिरी देते थे, कभी नादर गिरामी के मजार पर हाजिर होते थे, और इन सब से रुखसत होकर के आए, अल्लाह का दीन बच जाए, यजीद की बयत नहीं करूंगा, यहां तक के मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। कोई जान सकता है कि जिस आदमी ने 25 हज पाप यादा किए हो, 25 पाप यादा हज करने वाला इंसान मक्के में 8 ज़िलहिज्जा को हज किए बगैर वहां से रवाना हो जाए, इसलिए कि मक्के की हुरमत पामाल न हो। इमाम चले आए मक्का छोड़ करके, जनाब मुस्लिम ने अकील जैसा भाई नुसरत करने वाला, उसकी शहादत की खबर मिली, हुसैन ने बर्दाश्त की मगर अपने मौकिफ से हटे नहीं। दो मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंच गए, करबला के मैदान में पहुंचना था अरबाब करम, हर आदमी चाहता है, फिरात का की नहर बहुत बड़ी थी, छोटी नहीं थी। यजीदी लश्कर के खेमे भी बर्पा हो सकते थे, हुसैन का खेमा भी बर्पा हो सकता था, मगर यह गवारा नहीं किया लश्कर यजीद ने कि हुसैन का खेमा बर्पा हो। कहा हुसैन तुम्हारा खेमा भी आबो गया जमीन के ऊपर बर्पा होगा। हुसैन ने दीन की हिफाजत के लिए यह बात गवारा कर ली कि छोटे छोटे बच्चे अलतश अलतश की आवाजें दी, मगर अल्लाह का दीन हाय प्यास न कहे, इस्लाम प्यासा न रह जाए। इस्लाम की तशनगी को मिटाने के लिए ये नबी ने फरमाया है, फकत हुसैन के बच्चों का बंद था पानी, बहुत करीब थी वो नहर, कहते आब न था। मगर हाय हुसैन, जब इन बच्चों की आवाजें सुनते होंगे, सातवीं मुहर्रम से पानी बंद नहीं हुआ, पानी तो दूसरी मुहर्रम से बंद हो गया, सातवीं मुहर्रम से पानी खयाम हुसैनी में खत्म हो गया, जो स्टोर पानी था वो पानी भी नहीं रह गया। अब आप बताएं, 4 साल की सकीना भी प्यासी है, 6 महीने का अली असगर भी प्यासा है, 5 साल के इमाम मोहम्मद बाकर भी प्यासे हैं, ये बड़े छोटे बच्चे सब प्यासे हैं अरबाब करम, मगर हुसैन ने दीन के लिए गवारा कर लिया। अभी भी नहीं, जंग नहीं होगी अल्लाह का दीन जब तक मुतालिबा नहीं करेगा, लड़ाई नहीं होगी। यहां तक कि नवी मुहर्रम को हुसैन की फौज पर असर के वक्त हमला कर दिया गया बगैर किसी इत्तला के, मगर हुसैन ने 1 रात की मोहलत ले ली। ये शबे आशूर आई तो सारी दुनिया ने देखा कि तबक्कल इलैहि तबतीला की क्या तफसीर हुसैन ने पेश की, सबसे टूट के उसी के हो रहो। रात भर इबादत में गुजर गई, कहीं से तस्बीह की आवाज, कहीं से तहलील की आवाज, थोड़ा सा वक्त जब इमाम के पास बचा तो आप निकले, उस तरफ जाना शुरू किया, मैदान कताल की तरफ गए, साथ में नाफे इब्ने हिलाल आपके गुलाम साथ हो गए। मौला ने कहा तुम आओ, क्या फर्जंद रसूल आपको तनहा नहीं छोड़ सकता, साथ साथ चलते रहे। इमाम अपनी तलवारों से खजूर के दरख्तों से पत्तियां काट काट के गिराने लगे और नाफे से बताते जाते थे, यहां मेरा नासिर आबिस गिरेगा, जलती रेत पर उसका लाशा न पड़ा रहे। यहाँ मेरा नासिर जुहैर होगा, यहाँ मेरा नासिर सईद होगा। हुसैन शबे आशूर अपने नासिरों का बिस्तर लगा रहे हैं, एक एक नासिर का। उसके बाद इधर नाफे लौट के आए, उधर अजब मंजर देखा, खैमे में जनाब हबीब के सब लोग अपने तलवारों पर सैकल कर रहे हैं, नैजों को दुरुस्त कर रहे हैं, हथियारों से तैयारी कर रहे हैं। उधर नाफे इमाम हुसैन के खैमे के बाहर खड़े सुन रहे थे। मैं इतना सुना कि जनाब जैनब ने आवाज दी, पूछा ए भैया आपने अपने नासिरों को आजमा लिया है? कल करबला के मैदान में ऐसा तो न होगा कि आपको छोड़ के चले जाए? मैं इतना सुनना था। नाफे दौड़ते हुए आए, हबीब को आवाज दी, अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, सानिए जहरा को हमारी वफा पर यकीन नहीं है, सानिए जहरा को हमारी वफा पर यकीन नहीं, पूछ रही है कि तुमने आजमा लिया है भैया? नासिरान हुसैन आए, आवाज दिए शहजादी अगर आपको हमारे ऊपर शक है तो हुक्म दीजिए, हम अपनी तलवारों से आप अपनी गर्दनें यहीं काट के डाल दें। इमाम ने सबको दुआएं खैर दी, सुबह आशूरा आई, खुतबा इमाम के खात्मे के बाद एक एक नासिर चल जाने लगा। कभी इमाम से मुस्लिम इब्ने सजा रुखसत हुए, कभी बुरैर गए, कभी जुहैर गए, कभी सईद गए। जब नासिर न रह गए तो अइज्जा की बारी आई। अजीजों में भी अजब मंजर देखा, मुस्लिम इब्ने अकील के लाल गए कुर्बान हो गए, कासिम गए कुर्बान हो गए, हुसैन सबका लाशा लाते रहे। अरे हुजूर ये वो प्यासा है जो 71 लाशें ला चुका। करबला के पनवे से कभी इनका लाशा लाते खैमे में रखते हैं, कभी हुर के बेटे का लाशा लाते हैं खैमे में रखते हैं। अरबाब करम आज आपका ये आलम है, ये मातमदार बर्दाश्त नहीं कर पाते, इन्होंने जंजीरों से मातम शुरू कर दिया। मगर मैं कहता हूँ जरा करबला के उन मातमदारों से पूछिए जो अपने अइज्जा के लाशें देख रहे थे सामने रखे हुए थे, मगर हाय क्या मंजर था। तो वो आखिरी मंजिल आई, हुसैन आए। हुसैन ने आने के बाद एक मरतबा खेमे के बाहर से आवाज दी, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, या रुकैया, या सुकैना, अलैकुन्न मिन्निस्सलाम, मेरा सलाम आखिर कबूल करो। अदादारान हुसैन ये सलाम आखिर इमाम अली मकाम का खैमे में पहुंचना था। बीवियों ने आकर के इमाम से कहा हुसैन खैमे में अंदर आओ। इमाम को खैमे में बुलाया, कौन हुसैन की रुख्सत हो सकता है, कौन जान सकता है बहन ने भाई को कैसे रुख्सत किया। बिठलाया, भाई से कहा ए भैया जरा कुर्ते का टुकमा हटाओ, अपनी गर्दन को खोलो, माँ की वसीयत पूरी कर लो। चाहने वालों थोड़ी देर आपको जहमत देना है, हुआ कि माँ की वसीयत पूरी कर लूं। भैया सुनना था कि इमाम अली मकाम ने कहा क्या वसीयत की थी? कहा मेरी माँ ने जनाब जैनब फरमाती है, जब मम्मा रुख्सत हुई तो 4 साल की थी जनाब जैनब, 4-5 साल का सिंह था। कहा मुझे वसीयत की थी और कहा था ए जैनब जब हुसैन खैमे में आए और लिबास कोहना मांगे, पुराना लिबास पहने, तो फिर यकीन कर लेना कि अब लौटेगा नहीं, अब वापस नहीं आएगा। तो मैं मौजूद नहीं हूंगी, तुम हुसैन के गुलू का बोसा ले लेना, जिस गर्दन पर खंजर चलेगा तुम उस गर्दन का बोसा ले लेना। ए भैया मुझे बोसा ले लेने दो। एक मरतबा जैसे ही जैनब बोसा ले चुकी, एक मरतबा हुसैन ने आवाज दी ए बहन मुझे भी एक वसीयत की थी, और वसीयत ऐसी थी कि शायद मैं तुमसे कह ना पाता, मगर बाजू पर से अपनी रिदा हटाओ, मैं तुम्हारे बाजुओं का बोसा ले लूं, जिन बाजुओं में मेरे बाद रसद बनेगी। अरबाब करम हुसैन आए, हुसैन की शहादत हुई। ये मंजर आप सुनते रहते हैं और देखते हैं, हर बार बयान किया जाता है। शहादत हुसैन के बाद जुल्म का खात्मा नहीं हुआ, सरों के नैजा पर आ गया। मगर पिसरे साद ने आवाज दी, पिसरे साद ने कहा अभी लश्कर वालो अपनी कमरे न खोलो, बल्कि इस हुसैन और उनके साथियों का लाशा पामाल होना जरूरी है। यह सुनना था कि 10 मलाइन 10 मलूनों ने, जिनमें घोड़ों की नालबंदी की गई थी, घोड़ों की नालें लगाई गई थी, शहादा के लाशें पड़े हुए थे, उन्होंने जैसे ही पामाल करने के लिए आगे बढ़ना चाहा, हबीब इब्ने मजाहिर के कबीले के लोग आगे आए। कहा अमीर तेरे कहने से हमने हबीब को कत्ल कर दिया, मगर अगर हबीब का लाशा पामाल हो जाएगा
तो ये हमारे कबीले में हमारे लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात होगी। इसर साथ ने कहा हबीब का लाशा हटा दो। हुर के कबीले वाले आगे बढ़े, हुर का लाशा हटा दिया गया। आबिद के कबीले वाले आगे बढ़े, आबिद का लाशा हटा दिया गया। मगर हुसैन के कबीले का तो कोई था नहीं, हुसैन का तो पूरा कबीला करबला के बद में लुटा पड़ा हुआ था, शहीद था। 18 बनी हाशिम के लाशें पड़े थे, और अगर कोई फरियाद कर सकता था तो एक बीमार इमाम था जो लश्के आलम में था। आलम ये था कि घोड़े इधर से दौड़ते हुए आते थे और सहरा के लाल के जिस्म पर से गुजर जाते थे। अरबाब करम खुदा किसी गम में न रुलाए आपको सिवाय गमे इमाम के, सब चले जाते थे। पर रिवायत में एक बात मिलती है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने को घोड़ों के आगे डाले देती थी। अरे मेरे ऊपर घोड़े दौड़ा सकते हो, मेरे भैया का लाशा छोड़ दो। अल्लाह में मजलिसी इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के उस तूफान मुबारक रेगा रेगा हो गए अरबाब करम। मगर हाँ असरे आशूर गुजर गई, सूरज को गहन लग चुका, फुरात का पानी रेतों बुलंद हो चुका, मगर मलाइन ने अभी भी फुर्सत नहीं पाई। मिशले लेके चले, चलो खैमों को लूटना है। सब आए, यहाँ आलम यह था कि बीवियां एक खैमे से दूसरे खैमे में जाती थी। आग लगी हुई, बीवियों के सर से चादर छीन ली गई और एक खैमे से दूसरे खैमे में बीवियां जा रही। आज आप बैठे हैं, फर्श नहीं है मगर छत मौजूद है। बीवियों के पास न फर्श था, न छत थी, न पानी था, न गिजा थी। शहजादी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शाना हिलाया, ए सैयद सज्जाद तुम इमाम ज़माना हो, तुम्हारी माँ बहनों तुम्हारी फुफियों के सर पर चादर नहीं, ये आखिरी खैमा है जो जल रहा है। बताओ तुम्हारी फुफी खैमे में जल जाए या खैमे से बाहर निकले। इमाम ने फरमाया फुफी अम्मा खैमे से बाहर निकलिए। अब हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं अजब आलम देख रहा था, एक बाला कद की बीवी बार बार एक जलते खैमे में दाखिल होना चाहती है, आपकी वजह से रुकती है, बार बार दाखिल होती है। आखिर में मैंने देखा एक कोई बदनी गठड़ी ऐसी है जो अपनी पुष्ट पर लादे हुए खेमे के बाहर आई। अब जो मैंने करीब जाके देखा तो बीमार इमाम था जिसे ज़ैनब खेमे से लेके आई। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, दस्त बस्ता कहता हूँ, ए मौला हुसैन अली अकबर का लाशा आपसे नहीं उठा, आपने बनी हाशिम के बच्चों को बुलाया, जरा अपनी लाडली बहन को देखिए कि ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म को अपने पुष्ट पर लाद के बाहर ला रही हैं। बाबे करम शायद मुझे भी ताकत न रह गई, शायद आप भी न बर्दाश्त कर सके, मगर हाँ शाम गरीब आ गई, रात आ गई। वो रात जैसी रात न कोई देख सकता है न देख सकेगा। आलम क्या है, शहजादी ने बच्चों को एक जगह एक जगह बिठलाया, आप तो खैमा भी नहीं। और एक मरतबा उम्मे कुलसूम से कहा ए बहन आज अब्बास नहीं, पहले की जिम्मेदारी हमारी। दोनों बहनों ने पिलाया फिरना शुरू किया, पहरे के ऊपर है। एक मरतबा जो नजर दौड़ाई तो सकीना का पता नहीं, सकीना नहीं, बेताब हो गई हूँ। हुसैन की लाडली सकीना नहीं, मक्सल की तरफ गई, कटी हुई लाशें, हथियार पड़े हुए, धूप का आलम है। इस आलम में पहुंची हुई जा रही थी कि पूछा कहाँ, कोई किसी ने किसी बच्ची को देखा है? एक शख्स कहता है कि मैंने इस नशेब में से एक बच्ची को रोते हुए सुना। शहजादी नशेब में आई, नशेब के करीब आना था कि आपने आकर के देखा कि बच्ची बाबा के लाशे के करीब सो रही है। भैया देखना था, बाजू पकड़ के हिलाया सकीना, यहाँ कैसे आ गई, ये कौन है? आयशा फरमाती है जनाबे सकीना ए बूबी अम्मा मैं मक्सल में आवाज देती जाती थी, बाबा बाबा, तो इस कटी हुई गर्दन में आवाज आई है लैया लैया, ए सकीना मेरी तरफ चलिया, ए सकीना मेरी तरफ चलिया। मैं यहाँ आके अपने जनाबे शहजादा ने पूछा है सकीना पहचान दो बातों में होती है, सर से या लिबास से? तेरे बाबा के जिस्म पर लिबास मौजूद नहीं, जो लिबास है वो खून से रंग
ارشاد فرمایا جناب سکینہ نے ہاں کہا اے سکینہ جب تم سب مدینے واپس جانا تو ہمارے شیعوں سے ہمارا سلام کہنا. آپ کو حسین نے کٹی ہوئی گردن سے سلام کہا ہمارے شیعوں سے ہمارا سلام کہنا اور کہہ رہا اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب و بے کس کی پیاس کو یاد کر لینا. اور ارشاد فرما دیکھو جب کسی غریب و بے کس کا ماتم ہو تو میرا ماتم کر لینا کہ میں غریب الوطن قتل کر دیا گیا. بس ایک آخری منظر اور آپ کی رحمت تمام. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. خدا کرے گی یہ آنسو یہ آوازیں جو نکل رہی ہیں وہ آپ کی نجات کا اور آپ کے والدین کی نجات کا سبب بنے. یہ آنسو رومال زہرا میں جگہ آپ پائیں. زہرا کو بڑی تمنا تھی میرے لال کا ماتم کون کرے گا. اے فاطمہ دیکھیے آپ کا لال کا ماتم ہو رہا ہے. یہ عورتیں یہ بچے یہ مرد حسین کا ماتم کر رہے ہیں. ارے لا کے ابھی بکھلایا تھا تھوڑی دیر گزری تھی سرکار عمدۃ العلماء مولانا قلب حسین فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑی دیر گزری رات کا وہ کہ ایک مرتبہ بچے تھک کے سو گئے کہ دیکھا کچھ روشنیاں چلی آ رہی ہیں. یزید کے لشکر سے روشنیوں کو آتے دیکھ کے شہزادیاں اب ہتھیار تو تھے نہیں جلی ہوئی صوبے خیبات لے کے کھڑی ہو گئی کہ اب ہمیں دیکھو روکنا ہے اگر بچوں کو ستانے کے لیے آ رہے ہیں تو ان جلی جلی ہوئی صوبے خیمہ سے روکیں گے. مگر قریب آ کر کے دیکھا تو ہر کی بیوی اور چند عورتیں شرمندہ کچھ کھانا لیے ہوئے کچھ پانی لیے ہوئے. ارے حسین کی حاضری آئی ہے. چاہنے والوں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ایسا حاضری لاتے ہیں مگر وہ کہ لشکر یزید سے حاضری آئی ہے. پانی آیا کھانا آیا ہے. بیویوں نے کہا جن کے اتنے مقتول کربلا کے بن میں پڑے ہو وہ کیا کھائے کیا پیے. مگر ایک مرتبہ جب اسرار پڑھا تو شہزادی نے ایک پانی کا جام لیا اور سکینہ کے قریب آئی ایک مرتبہ بازو ہلایا بی بی اٹھو پانی پی لو بی بی اٹھو پانی پی لو. بچی ابھی غش کے عالم میں تھی نیند میں تھی. ایک مرتبہ چوکی تو فوراً پوچھا چچا پانی لے آئے میرے چچا پانی لے آئے. جناب جائنا فرماتی ارے تیرا چچا تو مراد کے کنارے سو رہا ہے بازو کٹائے ہوئے. یہ لشکر یزید سے پانی آیا ہے یہ لشکر یزید سے کھانا آیا ہے. میں یہ سننا تھا فرمایا بھوکی اما یہ خاندان رسالت کی بچی ہے بھوکی ہے انتہائی پیاسی ہے مگر پانی پیتی نہیں ہے. ایک مرتبہ پوچھا بھوکی اما آپ نے پانی پیا کبھی بھی کیسے پانی پی سکتی ہوں تم سب سے چھوٹی ہو تم سے چھوٹا اس قافلے میں اب کوئی نہیں ہے تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے پہلے تم پانی پیو. پر ایک مرتبہ اس پانی کے ہاتھ تھوڑے کو لیا اور پانی کا جام لے کر کے جناب سکینہ مقتل کی طرف بڑھی. پما
जो चल